जम्मू के बारे चल रही थी दो फरवरी 1968 का दूसरा केस मध्यांत में बात चल रही थी। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते, नाम क्या है क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, सिख लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उनका देश है, ये काल है। जैसे सिखों से पूछा जाए कि सदगुरु भगवान का क्या देश है, कौन सा काल है, तो कौन सा काल बता देंगे? आज से लगभग 500 साल पहले गुरु नानक जी आए और उनके द्वारा अकाल मृत्यु का पाठ चल, ऐसे ऐसे अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन वास्तव में अलग अलग रूप तो हो नहीं सकता, भगवान एक है तो भगवान का रूप भी एक ही मुकर्रर रूप होगा, एक ही देश होगा, एक ही काल होगा, मूल रूप में एक होगा और सामान्य रूप से अलग हो सकता है सामान्य शक्ति के कल्याण के लिए। तो मूल रूप में तो हमें बेसिक नॉलेज में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, क्या नाम क्या है, भगवान है तो सारी शक्ति का कल्याण करेगा या एक दो चार का करेगा, करोड़ों दो करोड़ों का करेगा? जैसे बौद्ध लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध को भगवान, तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स तो दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, क्राइस्ट के फॉलोअर्स फिर भी 100-200 करोड़ है, तो क्या 100-200 का ही कल्याण करेगा? भगवान होगा तो सारी शक्ति का कल्याण करेगा या थोड़ा को कल्याण करेगा? सारी शक्ति का कल्याण करेगा। इसलिए उसका नाम भी वैसा ही है, शिव नाम है शिव, क्योंकि सारी शक्ति का कल्याण करता है, शिव माने ही कल्याण का है। और रूप क्या है? उसका रूप वो है जो हम आत्माओं का रूप, हम आत्माओं का रूप है, जो कि बिंदु बिंदी लगाते हैं ना, इसकी याद क्या बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ये टीका यहां क्यों लगाते हैं? आत्मा यहां टिकी हुई, उसकी यादगार में टीका लगाते हैं। आत्मा का रूप शास्त्र में भी बताया, अणुवर्णीयान समन स्वय अणुरूप है, अति सूक्ष्म है। तो जैसे आत्मा का रूप है, आत्मा का परमात्मा का भी रूप है। ये बेसिकली बात है तो बताइए, लेकिन जब कार्य की बात आती है, नाम क्या है, रूप क्या है और क्या करता है, तो सब गड़बड़ा जाते हैं, क्या करते जाते हैं, तो वो भी बताया। तो वो शक्ति पर वो काम आकर के करता है जो दुनिया में कोई ने नहीं किया। क्या काम करता है? न इब्राहिम ने किया वो काम, न बुद्ध ने किया, न क्राइस्ट ने किया, न गुरु नानक ने किया, न विवेकानंद ने किया। जो काम भगवान आके करता है वो किसी ने नहीं किया। क्या काम नहीं किया? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाकर जाना, ये एक भगवान का ही काम है। ये कोई भी धर्म पिता ने ये काम नहीं किया। और वो भगवान धर्म पिता तो है, लेकिन ऐसे धर्म की स्थापना करके जाता है जो धर्म सारी सृष्टि के जितने भी धर्म हैं उन सब में ज्यादा सुख देने वाला। कौन सा धर्म है? देवता धर्म। देवताओं से ज्यादा सुख देने वाला तो भोगने वाला तो कोई अब दुनिया में होता ही नहीं। प्रभु देवताएं सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। तो बोला कि नाम रूप देश काल कार्य ये सब बेसिक नॉलेज में तो बताए, लेकिन जो एडवांस नॉलेज है भगवान आके विशेष नॉलेज देता है उसमें ये भी बताता है कि नाम शिव है वो तो एक सामान्य बात होगी। क्या कल्याणकारी है? अब कल्याणकारी तो सभी आदमी हो सकती है, नंबर वन परसेंटेज में तो सभी एक दूसरे के कल्याण। अपने बच्चों को कौन नहीं कल्याण करता है? टीचर है अपने स्टूडेंट्स का कल्याण करता है कि नहीं करता है? तो ये कल्याणकारी होना एक साधारण बात, लेकिन भगवान जो कल्याण करता है वो सारी मनुष्य शक्ति की, मनुष्य मात्र का और सभी आत्मा मात्र का कल्याण करके जाता है। कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ चैतन्य आत्माओं का ही कल्याण नहीं करता है, ये सृष्टि के जो भी पांच तत्व हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनका भी कल्याण करता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम ही है विस्तार के पापी। पहले छोटी पृथ्वी थी तो नई दुनिया थी, वो नई दुनिया भगवान ने आकर के बनाई। बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, दूसरे दूसरे धर्म वाली आत्माएं आती गई, पृथ्वी का विस्तार होता गया। भगवान जो है वो हर समय कार्य नहीं करता। क्या कार्यकाल ऐसे नहीं कि हर युग में आता है, संभवामी युग युग या कोई खास युग में आता है, सतयुग में आया हो, त्रेता में आया हो, द्वापर में या कलयुग में, नहीं। कब आता है? जब सारी शक्ति का पतन हो जाता है। दुनिया की जैसे हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, वैसे ये शक्ति भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। सतो ग्रह सतो सामान्य रजो और तमो। जब सारी शक्ति कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन जाती है, तब परमात्मा बाप आते हैं और आकर के त्रिदेव की प्रत्यक्षता पहनी करते हैं। 33 करोड़ देवता है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में भी विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो कोई होंगी। वो कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के भी चार पांच मुख दिखाए जाते हैं। क्या ये चार पांच मुख दिखाए जाते हैं इससे साबित होता है कि भगवान चार पांच विशेष आत्माओं द्वारा काम पूरा करते हैं। उन चार पांच आत्माओं में तीन तो है देवता दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हम आत्माएं बच्चे हैं उसके और वो हमारा बाप है सुप्रीम सूर्य। लेकिन अंतर ये है कि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका एक ऐसा पार्ट बना हुआ है कि वो इस शक्ति पर आता तो है। जैसे शास्त्र में लिखा है, कल्प कल्प लगी प्रभु उतारा, संभवा मिलेंगे जो में तो झूठी बात मिलेगी थी सच्ची बात मिलेगी। रामायण में लिखा है एक कल्प के बाद आता हूं, कल्प कल्प लगी प्रभु उतारा, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया त्रेता युग में आता हूं। रामायण में ऐसे लिख दिया, गीता में लिख दिया संभावन युग युग, मैं हर युग में आता हूं। अब हर युग में आएगा तो सतोप्रधान शक्ति में आने की क्या दरकार? शक्ति जब मकान पुराना होता है तभी तो उसको नया बनाता है कोई बात। तो कलयुग के अंत में आता है और आकर के सारी शक्ति की मनुष्य मात्र की आत्माओं को उद्धार कर दिया कहां ले जाता है? जो उसका घर है परमधाम। कोई कहें कि इसका क्या प्रयोग है कि परमधाम भी कोई अलग से धाम है जहां से आत्माएं आती हैं? तो प्रूफ यह है दुनिया की आबादी हमेशा बढ़ती रही है या घटती रही है? हमेशा बढ़ रही है आबादी, कभी कम नहीं होती। इसका मतलब अगर यहीं की इसी दुनिया की आत्माएं होती तो पहले भी आबादी बढ़ जाती। इसका से साबित होता है कहीं से आत्माएं लगातार आ रही हैं जन्म मरण के चक्र में, लेकिन वापस जाने का उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो जो आत्माएं लगातार आ रही हैं उससे साबित हो जाता है कि सृष्टि की जनसंख्या इसीलिए बढ़ रही है, और वो जनसंख्या बढ़ती हुई ही बताती है कि कोई ऐसा भी धर्म है जहां से आत्माएं आती हैं। शरीर तो यही तैयार होते हैं पांच तत्वों के, क्योंकि ये पांच तत्वों की दुनिया है, लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जो आत्मलोक कही जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सोल वर्ल्ड। मुसलमान उसको कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो वो अर्श कहो, परमधाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, सुप्रीम महबूब कहो, वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां से वो आता है और आकर के इसी शक्ति रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उनमें से जो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं उनको प्रवेश करते। ये सृष्टि क्या है? एक प्रकार का रंगमंच, नाटकशाला है। इस नाटकशाला में कुछ विशेष आत्माएं मुख्य पार्ट रहे भी तो होंगी। तो जो मुख्य पार्ट रहे आत्माएं हैं वो राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा। इन चार विशेष आत्माओं के द्वारा परमात्मा आकर के साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसको अपना शरीर है नहीं। क्यों नहीं अपना शरीर? हमको अपना शरीर होता है, हम गर्भ से जन्म लेते हैं और वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला, और हम आत्माएं सदैव स्वस्थिति में रहने वाली नहीं। इसलिए जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो सदैव शांत रहेगा, दुखी कभी होने का सवाल नहीं। इसलिए वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, इसलिए वो जन्मन के चक्र में नहीं आता। और हम आत्मा, हमें अपने स्वरूप का परिचय मालूम पड़ गया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर भी हम उस स्वरूप में सदाकाल टिक नहीं पाते। इसलिए हमारा सुख और शांति का मादा नंबरवार प्रसार प्रसार हो जाता है, और सुख शांति का मादा नंबरवार हो जाता है, इसलिए हमको जन्मन के चक्र में आना पड़ता है। वो परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वो आकर के कलयुग के अंत में हम आत्माओं को भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। निराकारी का मतलब हम सदैव ये स्मृति हमारी रहे कि हम आत्मा ज्योति बिंदु, ये देह और देह के संबंधी हमको याद ही था, याद हुआ थे अपनी देह को बहुत याद आती है, देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं। ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो ये जो पदार्थ है वो भी याद आते हैं साथ साथ। ये शरीर के पदार्थ है, आत्मा के पदार्थ, आत्मा का पदार्थ ये शरीर ही है, लेकिन हम आत्माओं को ये शरीर के पदार्थ भोगने होते हैं, परमात्मा इनको भोगता नहीं। इसको न शरीर का भोग भोगता है और न शरीर के पदार्थों का भोग भोगता है, इसलिए वो जन्मन के चक्कर में नहीं आते। हम जन्मन के चक्कर में क्यों आते हैं? हम देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ भोगने के जन्म जन्मांतर के आदि हम आत्मा। देवता थे तो भी शरीर का सुख भोगते थे, दुनिया के जो भी पदार्थ थे उनका सुख भोगते थे, और जब द्वापर कलयुग हुआ तो भी भोगते थे। अंतर क्या हुआ? सत्युग देवता में जो हम सुख भोगते थे वो आत्म की स्थिति में रहकर के भोगते, आत्मा की स्थिति रहती थी, इसलिए उसका लेप छेप नहीं लगता। किसका? देह और देह के पदार्थों का और देह के संबंधों का लेप छेप हमको चिपकता नहीं। और यहाँ क्या होता है द्वापर युग से, आत्मा की शक्ति छीन हो गई, आत्मा आठ कला की रहेगी तो हमको देह का सुख खींचने लगे, देह के पदार्थ हमको आकर्षित करने लगे, देह के संबंध हमको अपनी तरफ खींचने लगे, वो स्मृति में आने लगा बार बार। यही से दुख का मूल कारण क्या हुआ, स्व की विस्मृति होती गई और जो देह है जो अपनी चीज नहीं है, आज हमें देह दिखाई पड़ रही है और कल ये देह खलास हो जाएगी, वो देह है, देह के पदार्थ देह के संबंध वो याद आने लगे। तो जो असली स्मृति है उससे हम विस्मृत हो गए। क्या है असली स्मृति, आत्मा की याद, वो आत्मा की याद से हम महरूम होते गए होते गए होते गए, आज सारी दुनिया भौतिक बन गई। क्या सब मनुष्य मात्र जो है किसके पीछे पड़े हुए, हाँ भूत पांच तत्वों से बने हुए पदार्थों के पीछे पड़े हुए, बुद्धि कहां लगी रहती है 24 घंटे, देह के संबंधों में लगी रहती है, देह की परवरिश में लगी रहती है, देह के पदार्थों को इकट्ठे में इकट्ठा करने में लगी रहती है। तो ये जो लगाव पैदा हो जाता है इन चीजों की याद का, यही हमको फिर जन्म मरण के चक्र मिलाता है और ऐसे चक्र मिलाता है जिससे हमको दुख मिलता है सुख नहीं मिलता। अभी भौतिक बात बढ़ता जा रहा है, कब हो रहा है भौतिक बात में भौतिक चीजें पांच तत्वों से बनी हुई वस्तुएं ये हमको इतना आकर्षित करती जा रही है और आत्मा विस्मृति होती जा रही है। तो परमात्मा बाप आकर के मुख्य बात ये ही सिखाता है, क्या क्या प्रैक्टिस करो, आप हमको आत्मा समझो, दूसरे को भी देखो तो आत्म के रूप में विभूति के मध्य में जब चमकता हुआ सितारा देखने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो वो सितारा ही याद पड़ेगा, फिर ये देह याद नहीं पड़ेगी। देह जब याद नहीं पड़ेगी तो देह का आकर्षण भी आकर्षण नहीं होगा, जब आकर्षण नहीं होगा देह का, आत्मा की ही स्मृति रहेगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग का अनुभव करेंगे। इस दुनिया में भी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं आत्मा, अगर नहीं अनुभव कर सकती तो कुरान में ऐसे मुसलमानों ने जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि जब दुनिया का विनाश होगा कयामत होगी तो भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्यों, दुनिया का विनाश हो रहा है तो दुनिया दुखी होनी चाहिए, भगवान के बंदे क्यों मौज में रहेंगे, कोई कारण होगा हाँ, भगवान ने उनको पहले से ही ये गुप्त रूप में पाठ पढ़ाया, क्या तुम ये पढ़ाई पढ़ो, क्या पढ़ाई पढ़ो कि तुम देह नहीं हो तुम ज्योति बिंदु आत्मा। फिर ये पढ़ाने के साथ साथ फिर ये भी बताया कि आत्मा कैसे सृष्टि पर आती है, कैसे सुख भोगती है, क्या कारण होता है जो सुख भोगती है और क्या कारण होता है जो दुख भोगती है। चार अवस्थाएं हर चीज की दुनिया में ऐसे होती है, दो अवस्थाओं में सुख और दो अवस्थाओं में दुख, ये शक्ति में भी चार आयाम, शक्ति को त्रेता द्वापर और कलयुग, जैसे कोई ड्रामा होता है कोई नाटक होता है तो उसमें चार सीन होते हैं, तीन चार सीन होते हैं, तो ऐसे ही ये रंगमंच है, इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच में चार सीनों से मनुष्य आत्माओं को गुजरना पड़ता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो सत्युग से ही आकर के जन्म लेती है, ऑलराउंड सारी शक्ति का चक्कर का पार्ट बन जाती है। और जितनी ही कमजोर आत्माएं होंगी जिन्होंने आत्म की स्मृति का कम अभ्यास किया होगा वो पूरा चक्कर नहीं लगाएगी, कम अभ्यास किया है तो कम चक्कर लगा देंगी, कम जन्म पावेंगी, कम सुख भोगेंगी, और पूरा चक्कर लगाया है तो जरूर उन्होंने आत्मिक स्मृति का ज्यादा अनुभव किया। आत्मिक स्मृति का ज्यादा अनुभव करने से ज्यादा प्रैक्टिस करने से अब जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। अब ये बात क्लियर हुई जाकर के कि इसके लिए हमें ज्यादा जरूरी है अपने आत्मिक स्मृति को याद करते हुए आत्माओं के बाप परमात्मा को याद रखना। शरीर का वर्षा, वर्षा जो है शरीर का वर्षा शरीर के बाप से मिलता है, वो एक जन्म के लिए मिलेगा। शरीर के बाप से जो वर्षा मिलता है वो एक जन्म के लिए मिलता है, जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म के लिए मिलता है। एक जन्म के लिए शरीर है, एक जन्म का वर्षा मिलता है। लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो एक जन्म का वर्षा नहीं देता है, पक्का पक्का वर्षा तो देता है 21 जन्म का, सत्युग त्रेता दो कलों का, दो युगों का। लेकिन साथ साथ ये भी पक्का है कि अगर 21 जन्मों का वर्षा पक्का पक्का ले लिया तो द्वापर और कलयुग में भी हम ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे। भगवान तो आकर के पक्का ही वर्षा देता है, लेकिन द्वापर और कलयुग में जो कच्चा वर्षा मिलता है, कच्चा का मतलब दुख भी होता है तो सुख भी होता है, लेकिन द्वापर कलयुग की दुनिया में जो हम सुख भोगते हैं वो भी अभी की प्रारब्ध है। जिसने जितना आत्मिक स्मृति का पक्का अभ्यास कर लिया वो वहां बचा हुआ रहता है। अभी जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार द्वापर कलयुग में भी चलते रहेंगे। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, जैसे महारानी विक्टोरिया का वजीर था, सड़कों के स्ट्रीट लाइट में बैठ करके उसने पढ़ाई पढ़ी जिंदगी में, तो अपने पूर्वजन का कोई प्रारब्ध लाया क्या? पूर्वजन की कोई कमाई करके लाया? नहीं लाया। एकदम नीचे स्टेज में स्ट्रीट लाइट में कौन पढ़ेगा? जैसे झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनके बच्चे स्ट्रीट लाइट में पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रारब्ध लाने वाला भी वो बढ़कर के क्या बन गया? पढ़ लिख करके विक्टोरिया का वजीर बन गया। विक्टोरिया है महारानी और महारानी को चलाने वाला, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कितना ऊंचा पद बन गया, कैसे बन गया? हाँ, ये पढ़ाई उसने कहां पढ़ी? इसलिए मैं पढ़ी, इसलिए मैं तो फिर सभी ऐसी पढ़ाई पढ़ ली नहीं। उसने ये जो पढ़ाई पढ़ी है वो भगवान बाप से, कोई टाइम है कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं संगम में, तब आकर ये पढ़ाई पढ़ी। ये पढ़ाई पढ़ने वाला विक्टोरिया का वजीर भी पढ़ाई पढ़ेगा। जब क्रिश्चियंस निकलेंगे, क्रिश्चियंस जो अभी लास्ट अंतिम जो चार धर्म है मुख्य, देवता, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, उनमें जो चौथा धर्म का धर्म पिता है वो जब आता है तो फिर उसके फॉलोअर्स भी निकलते हैं, वो भी ईश्वर को पहचानते हैं, लेकिन लाख को पहचानते। जो पहले पहले पहचानने वाली आत्माएं हैं वो देव आत्माएं, और वो देव आत्माएं शुरू से भगवान के बाप को पहचानती है, इसलिए वो लंबे समय का सुख भोगने का अभ्यास अभी कर लेती है। सब नहीं करेंगे ये अभ्यास, कौन करेंगे? बाप के बच्चे होते हैं 10 बच्चों में बाप के रहते रहते सबसे जास्ती प्राप्ति कौन सा बच्चा करेगा? 10वां बच्चा करेगा या पहला बच्चा करेगा? पहला बच्चा जास्ती प्राप्ति करेगा, वो बड़ा बच्चा है। परंपरा में भी देखा जाए तो कोई भी धर्म की परंपरा हो उसमें बड़े बच्चे को राजा बनाया जाता है। क्यों? बड़े बच्चे को राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चे पहले पहले अपनी आत्मिक स्मृति को पहचानते हैं, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को जीवन कहानी को जान लेते हैं, 84 के चक्र को जान लेते हैं, वो बच्चे जो है ज्यादा प्राप्ति करते हैं भगवान से। तो यहीं से फाउंडेशन बन गया, ये फाउंडेशन फिर जन्म जन्मांतर चलता रहता है। कोई भी राजा होगा वो अपने बड़े बच्चे को देगा राजा, वो अगर सही छोड़ दे तो उसे छोटे बच्चे को। तो ये राजाई का वर्षा जो है वो कोई देता नहीं, राजाई की पढ़ाई कोई पढ़ते हुए किसी ने देगा? डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, छोटे बड़े, इन राजाओं को राजाई किसने दी? किसने पढ़ाई पढ़ाई?
संगम पर पढ़ी।
पढ़ाई होगी कि नहीं पढ़ाई होगी किसी? तो वो पढ़ाई अभी भगवान आगे को पढ़ाता है। कलयुग के अंत में जब सत्युग का आदि होने वाला होता है तब भगवान बाप आते हैं और राजयोग से। क्या राजयोग है? हाँ, वो राजयोग है मूल रूप में, अपन को आत्मा समझो, भगवान बाप को पहचानो। कौन है भगवान बाप? ब्रह्म कुमारी तो कह देंगे ज्योति बिंदु है भगवान बाप। अगर ज्योति बिंदु ही भगवान बाप है तो कुछ करके जाएगा क्या? ज्योति बिंदु शक्ति को परिवर्तन कैसे करेगा? बिंदु उधर उधर के सारा काम कर लेगी क्या? शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर शरीर चाहिए तो कौन सा शरीर चाहिए? तो ब्रह्म कुमार तो ये कह देंगे दादा लेकर शरीर चाहिए। अरे ऐसे तो कितने आए और गए। जैसे ब्रह्मा दादा आया, शरीर धारण किया, उनके द्वारा वाणी चली, आए और चले गए, शक्ति का परिवर्तन हुआ क्या? दुनिया नहीं बन गई क्या? नरक से स्वर्ग बना क्या? तो फिर भगवान कहां साबित हुआ? भगवान कब साबित होगा?
जो कुछ करेगा
भगवान का पार्ट कब साबित होगा? जब कुछ करके जाए। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा की पूजा नहीं है। तो त्रिदेव में से एक देवता, लेकिन तीनों देवताओं की कोटि है, नीचे मीडियम, सबसे ऊपर तीन देवता। सबसे नीचा देवता त्रिदेव में कौन? ब्रह्मा। उसकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि दुनिया सिद्धि को पूजती है। जो सिद्धि पा लेता है, सफलता पा लेता है, उसको दुनिया मानी। जिसने सफलता नहीं पाई उसको दुनिया मानती है। तो ब्रह्मा के द्वारा कार्य संपन्न दुनिया आता तो है, वाणी तो चलाता है, लेकिन जिसके द्वारा आया और वाणी चलाया, नाम उसका रखा गया क्या? ब्रह्मा मान बड़ी। जैसा काम किया वैसा नाम। दुनिया में जो माताएं होती हैं वो भी बहुत सहन करती हैं। पुरुषों के मुकाबले और स्त्रियों के मुकाबले अगर मुकाबला किया जाए तो ज्यादा कौन सहन करता है? बाप सहन करता है, टीचर सहन करता है, गुरु सहन करता है, कि माता सहन करती है? ज्यादा सहन तो माता करती है ना। सहन शक्ति माता में बहुत होती है। तो ब्रह्मा भी आए तो उन्होंने क्या किया होगा? सहन किया होगा। तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। तो जो काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में, कोई नाम ऐसा है जिसका अर्थ न हो? शास्त्रों में जितने भी नाम है वो अर्थ सहित नाम। दुर्योधन दुष्ट युद्ध जिसने किया, दुशासन दुष्ट शासन जिसने किया, रावण लोगों को जिसने रुलाया, नारद, नार माने जल, दा माने देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता रहता था लेकिन खुद नरक की दुनिया में रहता था, या स्वर्ग में चला गया, कहां चक्कर काटता रहता था? नरक की दुनिया में चक्कर काटता है, स्वर्ग में तो जाके नारायण, स्वर्ग में पहुंच जाता तो नारायण नाम पड़ता। वो नारायण नाम नहीं पड़ा, सिर्फ ज्ञान देने का काम किया लेकिन खुद धारण नहीं किया, तो स्वर्ग में नहीं गया। ईश्वर की नॉलेज, ईश्वर का ज्ञान जीवन में धारण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, या सिर्फ दूसरों को देते रहेंगे खुद धारण नहीं करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे? देवता कैसे बनेंगे? खुद धारण करेंगे जीवन में तो दूसरों को भी धारण करा सकेंगे। हम खुद ही धारण नहीं करेंगे तो हमसे जो सुनने वाले हैं वो भी धारण नहीं करेंगे। जितने भी शास्त्र में नाम है वो सब जैसा जैसा जिसने काम किया है वैसे नाम पड़े। लेकिन ये शास्त्र कहां की यादगार है? शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है यादगार कहां की है? इसी टाइम की यादगार। अब वो चाहे रामायण लिखी गई हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई दूसरे शास्त्र हो, गीता हो, तो सब यादगार कहां की इस समय संगम। लोग समझते हैं कि रामायण का जो कार्यकाल है वो त्रेता युग है, महाभारत का कार्यकाल है वो द्वापर युग है, ऐसे ही समझते हैं। और जो कलंकी धरा अवतार में हुआ उनका कार्यकाल है कलयुग। हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह अवतार, उनका कार्यकाल है सतयुग। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्रों में जितना भी जो भी वर्णन आया है, कोई भी भगवान के रूप में, कोई भी हीरो हीरोइन के रूप में जो भी वर्णन आया है, चाहे शंकर का, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, वो किस समय की यादगार है? इस समय संगम युग में जो कार्य किया है वो भी शास्त्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग मनुष्यों ने लिखी है। तो अलग अलग मनुष्य जो शास्त्र लिखेंगे उसमें ज्यादा सच्चाई होगी, या भगवान आकर के जो बताएंगे उसमें ज्यादा सच्चाई होगी? भगवान भी आकर के उन शास्त्रों का सही अर्थ बताता है। तो शास्त्र सब इसी से मिलते, लेकिन फिर वो समझ में क्यों नहीं आते किसी को? क्योंकि उन शास्त्रों का सही अर्थ भगवान के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो बता रहे हैं कि जैसे आत्माएं होती है वो उनका नाम रूप देश काल बदलता जाता है 84 जन्मों में, ऐसे ही मेरा भी नाम रूप देश काल इस शक्ति पर आने के बाद निश्चित होता है। जैसा जैसा मैं कार्य करता हूं वैसा वैसा मेरा नाम रखा हुआ है। भगवान के एक नाम है कि अनेक नाम है? भगवान के नाम अनेक रखे हुए हैं, इसका मतलब वो अनेक प्रकार के पार्ट बजा रहती है। शंकर जी के अनेकों नाम रखे, विष्णु के अनेकों नाम, विष्णु सहस्त्र नाम की चौपड़ी बना दी। तो जितने जितने काम किए हैं उतने उतने नाम पड़े। तो ये जानना जरूरी है क्या कि हम आत्मा कौन, और हमने इस सृष्टि रूपी रघुवंश पर आकर के कौन सा विशेष पार्ट बजाया? भगवान आता है वो भी पार्ट बजाता है, फिर भगवान के साथ हमने कौन से देवी देवता का पार्ट बजाया? वो हमारी बुद्धि में बैठे और उसके आधार पर ये भी बैठे कि 84 जन्मों में हमने कौन से विशेष विशेष पार्ट बजाए, कैसे कैसे जन्म लिए और कैसे कैसे हमने कर्तव्य किए। द्वापर युग कलयुग की तो मनुष्यों की हिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास। 2500 साल की हिस्ट्री है जब से ये मनुष्य धर्म पिता है इस सृष्टि पर आए हैं। मनुष्य धर्म पिताओं के नाम तो है ना, उन्होंने जो धर्म स्थापन किए वो इस सृष्टि पर मौजूद तो है ना। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया 2500 साल पहले, उनकी हिस्ट्री है। और उनके बाद जो भी धर्म पिताएं आए मनुष्य गुरु रूप में, उन सबकी हिस्ट्री बुद्ध की है, क्राइस्ट की है, गुरु नानक की है, शंकराचार्य की है, मोहम्मद की है। लेकिन हमारा देवी देवता सनातन धर्म किसने स्थापन किया हिंदुस्तान में, वो किसी को पता ही नहीं। पता कैसे होगा? वो तो जन्म के चक्कर में आता ही नहीं। हम जन्म के चक्र में आते गए, हम मिलते गए। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री किसी के पास नहीं। जब त्रेता युग पूरा होता है तो आधा विनाश हो जाता है सृष्टि का, तो वो हिस्ट्री किसी के पास हो ही नहीं सकती। सिवाय भगवान जब तक इस सृष्टि पर ना आए तब तक वो सच्ची ज्ञान सच्ची नाली इस सृष्टि की ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की कोई नहीं दे सकता। अब भगवान बाप आया हुआ बताते हैं। लोग तुमसे पूछते हैं भगवान का नाम रूप देश काल बताओ, तुम आत्मा उनसे पूछो, तो वो भी बुझ जाएंगे। वो हमसे पूछते हैं, यही बात हम उनसे पूछें, तो कोई भी धर्म का आदमी वो बुझेगा, सही नहीं बता पाएगा, बुझ जाता है। किसको ये थोड़े ही पता है कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ना आत्मा का रूप नाम रूप देश काल किसी को पता है, और ना परमात्मा बाप का किसी को पता है। कौन बताता है? भगवान खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, खुद ही आकर के हम आत्माओं का परिचय देते हैं। इसलिए मनुष्यों ने जो गीता लिखी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो क्या एक अर्जुन को ही बताया या सब अर्जुन ने? एक ने 100% पुरुषार्थ किया तो 100% का नाम चल गया अर्जुन, लेकिन पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले तो सभी अर्जुन मुझे कमल, अपने पुरुषार्थ को अपने भाग्य को बनाने वाले तो हम सभी हैं ना, तो हम सभी अर्जुन हैं। तो आत्माओं से भी पूछा जाए कि तुम अपना नाम रूप देश काल बताओ जन्म जन्मांतर का, तो कोई नहीं बता सके, और परमात्मा का भी कोई बता नहीं सके। तुम तो जानते हो कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, वो रिकॉर्ड होते हैं, पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड होते ग्रामों को उसमें ढेर सारे गीत भरे हुए होते थे ना, जब शुरुआत में चला तो एक रिकॉर्ड में एक ही गीत बजता था, फिर रिकॉर्ड छोटे होते हैं, एक ही रिकॉर्ड में ढेर सारे गीत भरे हुए, फिर टैप रिकॉर्ड चला, एक ही टैप में कितना मैटर भर जाता है, फिर उसके बाद ये वीसीडी चले, वीसीडी के बाद अभी डीवीडी चले, अब उसके बाद छोटे छोटे वो छोटी सी बने हुए यंत्र आते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें सारा भर जाता है,
आईफोन, आईफोन
नहीं नहीं नहीं, ये
एमएसएन मोबाइल में जिस पर एमपीडब्ल्यू मिशन,
हाँ ऐसे छोटे छोटे चले हैं ना, इतने से वो डाल दो तो ढेर सारा मैटर उसमें भर जाता है। तो अब ये रिकॉर्ड छोटे होते जा रहे हैं, पहले बड़े बड़े थे, ऐसे ये आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ, ये सबसे वंडरफुल रिकॉर्ड। कोई कहे किसने बनाया, तो ये बनाया नहीं जाता है, वो रिकॉर्ड तो खलास भी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये रिकॉर्ड आत्मा का रिकॉर्ड ये कभी नष्ट होता नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा बाप भी अजर अमर अविनाशी, जिसका रूप बिंदु, आत्मा का भी रूप बिंदु और परमात्मा का भी रूप बिंदु, सांप का बच्चा सांप का बाप दोनों का रूपरेखा एक ही जैसी होगी ना, सांप लंबा तो सांप का बाप भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो उसका बाप भी मोटा ताजा, कीटा वो छोटा तो उसका बाप भी छोटा, तो ऐसे ही आत्मा ज्योति बिंदु, तो ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, लेकिन ये विशेषता है कि वो बाप जो शिव है आत्माओं का, वो सिर्फ इस शक्ति पर एक जन्म आकर के लेता है, क्या वो सिर्फ बाप के रूप में इस शक्ति पर जब आता है तो एक ही जन्म लेता है, और हम आत्मा
84,
हम 84 चक्र में आते हैं और हरियुग में आते हैं, वो सिर्फ संगम युग में ही आता है, कलयुग के अंत में और सत्युग के आदि में, ये अंतर है। बाकी छोटी बिंदी हम आत्मा भी है परमात्मा भी, उनमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, यहां भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते, कहा हमारे ब्राह्मण परिवार में भी बहुत ऐसे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कोई कोई तो ऐसी हैं कि उनसे पूछो तो कुछ बता ही नहीं सकेंगे, बस बाबा 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 करती रहती है। बाबा की क्लास में आएंगे तो सो भी जाएंगे। जो सरेंडर होकर के रहे माउंट आबू, सत्तर साल की गुड्डियां बैठी हुई, कोई से पूछो आत्मा के बारे में तो मुझे नहीं बताएंगे। आत्मा बिंदी को कैसे याद करें, उनकी ये समस्या है अभी भी, उन्हें बिंदी जैसे याद ही नहीं आती। बस बाबा याद करें, ब्रह्मा बाबा याद आ जाएगा उनको। तो यहां बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते, और ऐसे भी हैं जो आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और परमात्मा के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत गहराई बता सकते हैं। ऐसे ही बाबा के पास बहुत आकर के पड़े हुए सरेंडर भी हुए, लेकिन ज्ञान उनमें है ही नहीं, बस खाते पीते और सोते, जैसे अवधूत होते हैं ना, अवधूत पड़े रहते हैं बस कलम लगा, ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाकी विकार से छूट गए, बाबा के घर में आकर के बैठ गए, संन्यास धारण किया है, ये भी एक कमाल की बात। क्या जो बाबा के घर में आकर वहां बैठ गए, ये अड़सठ की वाणी है ना, तो जो भी आकर के बैठ गए वो सन्यासी थे, सन्यासी हुए या गृहस्थी हुए, सन्यासी वो सब सन्यासी है, तो सन्यास धर्म की आत्मा है सब, है मानेंगे कैसे नहीं, सन्यासी किसे कहा जाता है और गृहस्थी किसे कहा जाता है, घर में रहे क्या, क्या वो घर में ब्रह्म कुमार कुमारी क्या घर में नहीं रहते, वो ब्रह्म कुमारियां घर में रहती है ना, नहीं घर को गृहस्थी नहीं कहा जाता, न ग्रह ग्रह उचित ऐसे तो श्लोक बनाए हुए हैं मनुष्यों ने, घर को गृहस्थी नहीं कहा जाता, घर वाले को गृहस्थी नहीं कहा जाता, जो सन्यासी है वो भी घर बना के रहते हैं, गृहस्थी किसे कहा जाता है, गृहणी ग्रहम उचित, जो घर में घरवाली होती है घर संभालने वाली, बाप जो है वो तो बाहर संभालेगा कमाई करेगा बाहर की दुनिया में जाके, और गृहस्थी में गृहिणी क्या करती है, घर संभाल, तो जिसके पास घर संभालने के लिए बाल बच्चे संभालने के लिए गृहिणी हो वो गृहस्थ कहेगा, तो ब्रह्म कुमारी वो गृहस्थ कहेंगे या सन्यासी कहेंगे, सन्यासी नहीं, भगवान सन्यासी वो पढ़ाई पढ़ाने नहीं आते, बीके वाले कोई बीके वाली बहने हैं जो सरेंडर होकर बैठी हुई है, वो अपन को क्या समझती है, हम गृहस्थी है कि सन्यासी है,
गृहस्थी समझती है,
समझती है लेकिन है क्या गृहस्थी है, बाबा ने तो कहा घर गृहस्थ में रहते हुए तुम विकारों के ऊपर जीत पाओ, तो घर गृहस्थ में रहती है क्या, घर गृहस्थ में तो नहीं रहती, घर गृहस्थ में रहे और रहकर के विकारों पर जीत पाए तब कहा जाए कि बड़ा काम किया, नहीं तो जैसे सन्यासी हैं दुनिया के वो जंगल की दुनिया में रहते हैं, गृहस्थ से कोई मतलब ही नहीं, तो विकारों में जीतना क्या बड़ी बात, लेकिन मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, मैंने गृहस्थियों को पढ़ाने आता हूं, इसलिए एडवांस नॉलेज में जितने भी निकले वो सरेंडर वाले निकले या गर्भस्थ के निकले,
ज्यादा तो गर्भस्थ के निकले,
नहीं सरेंडर ब्रह्म भगवान ने कहा निकले,
थोड़ी बहुत तो निकली,
एक दो निकली है तो उनके कोई पूर्वजन्म के संस्कार होंगे, पूर्वजन्म में भी वो नहीं रही होगी क्या, पूर्वजन्म में भी वो सन्यासी बनकर के नहीं रही होगी, गृहस्थी बनकर के ही रही होगी, ज्ञान लिया होगा, और हमने भी फिर पूर्वजन्म में हम भी सरेंडर होकर के नहीं रहे होंगे, हम लोगों ने भी घरग्रस्त में रह के ज्ञान दिया होगा, यज्ञ की आग में यहां नया तो कोई नहीं आता क्या, जो पहले थे वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के आते, एक मुरली वाक्य आया हुआ है, धनवान बाप का बच्चा होगा तो गरीब के यहां गोद लेगा जाके, कोई अरब पति करोड़पति का बच्चा है तो झोपड़ी वाला कोई आदमी होगा उसके घर में गोद लेगा जाके, पलेगा जाके वहां बिल्कुल नहीं पलेगा, ऐसे ही ये ब्रह्माओं ने जिनकी परवरिश की है, सरेंडर करके रखा हुआ है, वो बहुत अलग बात होगी। वो सब सन्यासी है। यही कि आज में हम बच्चे तो गृहस्थी थे और अभी भी गृहस्थी, इसलिए हम गृहस्थियों को बाप अगर पढ़ाते हैं और बाप बाप के रूप में आकर के पढ़ाता है, मां के रूप में पढ़ाई नहीं पढ़ाता। मां के रूप में बेसिक नॉलेज, मां होती है घर में, वो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाएगी या बीएमए की पढ़ाई पढ़ाएगी, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाएगी। तो वो चीज अलग जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चल रही है, वो जैसे दुनिया में साधु संत महात्माएं होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऐसे उनकी दुनिया चल रही है। उनको पढ़ाई पढ़ाने के लिए भगवान नहीं आता। बाप के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता। बाप के रूप में जब आकर के पढ़ाई पढ़ाता है तो सिर्फ गृहस्थियों को पढ़ाता है। इसलिए वहां दो तरह की आत्माएं पल रही थी, एक तो सरेंडर होकर जो अंदर पड़ी हुई थी वो सब है सन्यासी, और दूसरे वो जो बाहर से आते थे, घंटा दो घंटा पढ़ाई थी, सारा दिन अपने धंधे धोनी में गए, एडवांस में सारी भूल जाते कौन से घर में रहने वाले, कोई घर वालों को बुद्धि नहीं जानते। जो जन्म जन्म पर सन्यास धर्म में रहे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ही। देखो कितनी सहज बातें हैं, वही मुरली की बातें हैं जो 70 साल से हो मुरली। ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा के जीवन में जो बात हुई वो योग्य जीवन में हुई। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया हार्ट फेल होकर के, तो जितने बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो सब अचानक शरीर छोड़ते जा रहे। तो कोई राज होगा ना इसमें, क्या राज होगा? राज यही है कि जो राज की बात हम गृहस्थियों को भगवान आकर के बताते हैं, वो राज वो सन्यासी लोग नहीं जानते। और यही बात महाभारत में लिखी हुई है, इसी समय की यादगार। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी थे ना, है बड़े सन्यासी थे ना, फिर सारा ज्ञान समझने के बावजूद भी गीता तो कौरवों के बीच में सुनाई गई और पांडवों के बीच में भी सुनाई गई, लेकिन वो द्रोणाचार्य और वो भीष्म पितामह भगवान को पहचान नहीं सके और भगवान को सहयोग दे नहीं सके। किसको सहयोग दिया? कोई कौरवों को सहयोग दिया, धृतराष्ट्र को, अंधे धृतराष्ट्र को सहयोग दिया, उनके भाग्य में ही नहीं। इसलिए बोला कि मैं तुम गृहस्थी बच्चों को आकर के पढ़ाता हूं, लेकिन सन्यासी लोग तुमको गिरी हस्ती समझते हैं। सन्यासी लोग जो है वो गृहस्थी वालों को ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? ऊंचा। और गृहस्थी भी जाके उनके पांव छूते, कोई भी गृहस्थी होगा कोई गुरु के सामने जाएगा तो क्या करेगा? पहले ही दंडवत प्रणाम करेगा, माथा झुकाएगा ना। अब भगवान को सोचा गृहस्थी हमको नीचा समझते हैं और भगवान आकर के हमको ऊंचा समझता है कि यही मेरे देवता ही बच्चे हैं, यही देवता बनते हैं। वो सन्यासी जो है वो सन्यासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो देवता धर्म के थे वो देवता धर्म के ही आकर के जब द्वापर युग से नीचे गिरते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्ट होने वाले जो है वो ही सन्यासी आकर के अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेसिक नॉलेज की। जो गृहस्थी है उनको आकर के मैं पढ़ा, तुम 84 जन्म लेने वाले हो, 84 जन्मों के आदि में नारायण का राज्य था, नारायण सन्यासी था या गृहस्थी था, मंदिर बने हुए क्या यादगार बनी हुई, दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं या एक खड़ा हुआ है सिंगल,
दोनों
तो हम लक्ष्मी नारायण के राज्य से अब तक जन्म लेकर चले आ रहे गृहस्थ धर्म, सन्यासियों ने सारा डब्बा बोल दिया, द्वापर युग से ये सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, कन्वर्ट होकर के भारत का नाम बालक है कि बदनाम किया, भारत का नाम बदनाम कर दिया। अभी भी सन्यासी भारत के विदेशों में जा रहे हैं और वहां जाकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तुमको, गीता की, गीता की भगवान ने आकर के जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी वो राजयोग हम तुमको सिखा रहे हैं, जबकि राजयोग के बारे में उनको कुछ पता पता ही नहीं, देह का योग सिखाते हैं, आसन सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, यही तो सिखाते हैं, लेकिन क्या ये असली राजयोग है? नहीं, असली राजयोग है आत्मा का उत्थान, इससे वो आत्मा का उत्थान अभी भगवान आकर भी करते हैं। आत्मा जैसे बीज है और ये शरीर जैसे वृक्ष है, बीज अगर पावरफुल होगा तो वृक्ष भी पावरफुल होगा, तो भगवान आकर के ये बीज को मजबूत बनाते हैं, आत्मा रूपी बीज को मजबूत कैसे बनाया जाए, आत्मा की स्मृति से आत्मा की याद करो और उस बीज में अगर ताकत बननी है ज्यादा से ज्यादा तो परमात्मा बाप को याद करो। तो बताया सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, क्या था हमारे धर्म से सन्यासियों का धर्म बिल्कुल अलग, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे किसे कहा जाता है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, यह ज्ञान इनके लिए नहीं है, इनके लिए हमारे दिन के लिए ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए नहीं है, अगर सन्यासी विदेश में जाने वाले बंडल लग रहा है नई बात लग रही क्या, ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ब्रह्मा को तो पहचाना लेकिन बाप को नहीं पहचाना, तो वो उनके लिए ये ज्ञान नहीं है, कौन सा ज्ञान है, वो बाप आकर पढ़ाते हैं बाप के रूप में, मां के रूप में तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया, वो सारी शक्ति के लिए है, उसमें सन्यासी भी है गृहस्थी भी है दूसरे धर्म की आत्माएं भी है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं हैं, मां के द्वारा जो पैदा होते हैं बच्चे उनकी सबकी गारंटी होती है, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, कोई पढ़ लिख करके क्या बन जाते हैं, कोई बिना पढ़े लिखे बड़े सेठ साहूकार बन जाते हैं, कोई क्या बनते हैं कोई क्या बनते हैं, तो सारी शक्ति ब्रह्मा की औलाद तो है लेकिन बाप के बच्चे सिर्फ तुम बच्चे बनते हैं, और अगले जन्म में जाके नारायण देवता बनेंगे या इसी जन्म में बनेंगे, इसी जन्म में बने तब तो पढ़ाई सच्ची, डॉक्टर की पढ़ाई यहां पर और कोई कहेंगे डॉक्टर अगले जन्म में बनोगे, इंजीनियर की पढ़ाई यहां पर है और कोई अगले जन्म में इंजीनियर बन जाओगे, तो मूर्ख भी होगा कोई पढ़ाई पढ़े, भगवान आकर के प्रैक्टिकल बात बताते हैं, बच्चे मैं यहां तुमको डायरेक्ट नर से मनुष्य से देवता बनाता हूं नारायण बनाता हूं, ऐसे नहीं दुनिया का विनाश हो जाएगा तो फिर नारायण ऊपर से टपक पड़ेंगे, इस बारे में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे संपूर्ण पवित्र तुम बने थे, 16 कला संपूर्ण पवित्रता तुम्हारे पास थी उनके पास नहीं थी, इनके पास हाँ ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं जो ब्रह्मा को भगवान का साकार रूप मानने वाले हैं उनके लिए ये बात पवित्रता की बात नहीं है, वो पूरी पवित्रता धारण नहीं करते, तुम पवित्र थे आदमी अपवित्र बन गए। क्यों? जब हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, एवर प्योर बाप के बच्चे हम बने, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो बनी नहीं, तो फिर ये बात कैसे कि अपवित्र हम क्यों बन गए? तो आप ऐसे दूसरे दूसरे धर्म के जो शक्ति पर उतरे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे, दूसरे धर्म स्थापन करने वाले, और उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर आए, उनके संघ के रंग में हम, उनके संघ का रंग हमको लग गया, तो हम अपवित्र बन गए। वो राजा का बच्चा हूं, एक राजा का बच्चा हो और उसके साथ प्रजा वर्ग में से, साहूकार वर्ग में से और राज्य अधिकारी वर्ग में से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, चार चार दस ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटे तबके के, छोटे परिवार के बच्चे हैं, वो सब साथ साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सबको कुसंग लग जाए, बुरा संग लग जाए, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? राजा का बच्चा ज्यादा बिगड़ेगा या छोटे आदमी के बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे? बड़े आदमी। तो आप कौन से, कैसे बाप के बच्चे? बड़े बाप के बच्चे। वो इब्राहिम बुद्ध कहते हैं तो बाप ही उनसे आते हैं, और हमारा बाप सत्य के आदि, उसको हमने पहचाना है। जो उस बाप को पहचान के फिर भूल जाते हैं और दूसरों को अपना बाप बना लेते हैं, दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं, दूसरे देर है नहीं मत पर, वो बाप के बच्चे नहीं है ही नहीं। तो ये बुद्धि अब तुमको मिलती है, क्या तुम ऐसी पवित्र बुद्धि वाले बनते हो कि तुम्हारे पूरे 84 जन्म हैं? कैसे तुम चक्कर लगाते हो? ये चक्कर लगाने की बुद्धि तुमको मिलती है कि 84 में हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया, बुद्धि में बैठता है इस तरीके से हमारे 84 के चक्र हैं। दुनिया में तो जरा भी कोई इन बातों को नहीं जानते, इन बातों को कि आत्मा की जानकारी क्या है और आत्माओं के बाप के परमात्मा बाप की जानकारी क्या है, आत्माएं कैसे कैसे जन्म लेती हैं और हमारी आत्मा 84 चक्र में चक्कर लगाएगी या नहीं लगाएगी, कम जन्म लेगी या पूरे 84 जन्म लेगी और कौन कौन से जन्म लेगी, ये हमारी बुद्धि में बैठता है, बैठेगा, और बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो देखो ये ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान किससे आता है?
राम बाप से।
ज्ञान आता है एक राम बाप से, जिसमें निराकार राम प्रवेश करता है बाप के रूप में, बाकी सबसे भक्ति आती है। क्या जो ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं वो ज्ञान ज्यों का त्यों 100% ज्यों का त्यों कोई सुना सकता है क्या? कुछ ना कुछ मिक्स कर देगा, जो मिक्स कर देगा, जैसे एक दूध का घड़ा भरा हुआ रखा है और उसमें सांप का विष कोई एक बूंद डाल दे तो सारा क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान जो है वो भगवान ही आकर के अपने स्वरूप में, सच्चे स्वरूप में, मुकर्र रूप में, मुकर्र रथ के द्वारा जो ज्ञान देता है वो ही सच्चा ज्ञान है, और बाकी उसको सुना हुआ दूसरा कोई सुनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अपनी मनमत मिक्स करेगा। जो मनमत मिक्स होती है उससे दुनिया जो है नीचे गिरती है, ऊंची उठी ही नहीं सकती। अभी भगवान बाप पढ़ाते हैं, भगवान से जो डायरेक्ट सुनते हैं, भगवान की परवरिश लेते हैं, तो वो तो अभी विचारी ज्ञान बनेंगे, अभी विचारी ज्ञान ऊंचा ले जाएगा और बेविचारी ज्ञान नीचे गिराएंगे। हम 10 आदमियों की बातें सुने और 10 आदमी हमारे गुरु बने तो एक रास्ता बताएंगे या 10 रास्ते बताएंगे? 10 रास्ते हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी ना। आज दुनिया में रावण का राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा, सब रावण संप्रदाय क्यों बन गए? रावण को 10 से तो 10 मतें बताता है, एक सिर वाला राम का किसी को ज्ञान ही नहीं है तो एक मत पकड़ेगा कैसे? रामलीला करते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को दस सिर दिखाते हैं, क्यों क्यों दिखाते हैं? आज दुनिया में भगवान राम कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। वो खुद भगवान राम आकर के अपना परिचय देता है तब सबको परिचय होता है, बच्चों को वो भी नंबर वन। जिनको पूरा परिचय बुद्धि में बैठता है वो 84 जन्म लेने वाले बनते हैं, जिनको कम परिचय बुद्धि में बैठता है वो कम जन्म लेने वाले। जितने कम जन्म उतना दुख ज्यादा है और सुख कम होता जाएगा।